नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मामला चल रहा था सीएए का, लेकिन सीएए में डांट खा के, सीएए में स्टे रिजेक्ट करवा के भी हमारे जो पंचमकार तत्व हैं उनको चैन नहीं आया और उन्होंने फिर रोहिंग्याओं के लिए, यानी एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो भाई हिंदू सिख पारसी बौद्ध जैन जो आ रहे हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जिनको कि प्रताड़ित किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि साहब के उनके अलावा जो लोग प्रताड़ना कर रहे हैं उनको भी साथ में ले लो अंदर, एक तरफ तो वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ चालू हो रहे हैं कि साहब ये जो रोहिंग्या हैं जो म्यांमार के हैं, ओरिजिन उनका म्यांमार है, और म्यांमार में भी वो आए क्यों हैं, उनको भगाया क्यों है बौद्धों ने, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया। यांगकाई से एक जगह है, उस वहाँ पर हिंदुओं का नरसंहार किया था और उसके बाद बौद्धों ने उनको मार मार के वहाँ से रवाना किया, भगा दिया, और इस कारण वो दुनिया भर में इधर उधर फैले और बहुत सारे जो हैं वो बांग्लादेश और बांग्लादेश से होते हुए और भारत में भी आ रहे हैं और उनको जो है वो कुछ हमारे जो देशद्रोही सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो देशद्रोही राज्य सरकारें उनको फैसिलिटेट कर रही हैं कि वो किसी तरह से आके भारत में बस जाएं और उनका वोट बैंक बढ़ाएं। और दूसरी तरफ जब कोर्ट में ये पूछा जाता है कि भाई मैं बलूचिस्तान का एक हिंदू हूँ, वहाँ मुझे मारा पीटा जा रहा है, मेरी बच्चियों की सुरक्षा नहीं है, मेरी बच्चियों को दिन में अपहरण कर लिया जाता है और मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? तो कहते हैं आप यहाँ आओगे तो वोट बढ़ाओगे सरकार का, ये इंदिरा जयसिंह ने बोला। लेकिन आज मुझे और अभी अधिक प्रसन्नता इसलिए हुई कि आज रोहिंग्याओं के मैटर में सरकार ने क्लियर स्टैंड लेके और सुप्रीम कोर्ट को 2-2 के 1 बात बता दी, ये कि देखिए ये आपका क्षेत्राधिकार नहीं, किसको सिटीजनशिप देना है और किसको सिटीजनशिप नहीं देना है ये एक सॉवरन राइट है गवर्नमेंट का और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो बाहर के जो इलीगल हैं उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है यहाँ पे, उनका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है इक्वालिटी का या और किसी का, वो जो राइट्स हैं वो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। केवल आर्टिकल 21 ऐसा है जो सभी लोगों पर लागू होता है क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स वाला एक इशू आ जाता है कि भाई किसी की जान देनी है अगर तो जान लेने के लिए जो है वो एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई भी फंडामेंटल राइट्स इनको अवेलेबल नहीं है। कल को आप इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की दे सकते हो क्या? अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, राइट टू इक्वालिटी जो है वो अवेलेबल टू सिटीजन या जो नॉन सिटीजन हैं वो सरकार डिटरमिन करेगी, कोर्ट नहीं डिटरमिन करेगा, कोर्ट कोई नहीं होता है डिटरमिन करने वाला। और आज ये सरकार ने स्पष्ट रूप से कोर्ट को कह दिया, यानी कोर्ट को ये कह सकते हैं कि भाई मीठा मीठा एक ये जवाब दे दिया कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस मीठे से, क्योंकि कोर्ट में हर बात मीठे से कही जाती है, कोई बात कड़वी नहीं कही जाती। कई बार हमारे लोग जो हैं वो बड़े विचलित होने लगते हैं कि साहब कि ये क्या है, ये कोर्ट इस तरह से कर रहा है, कोर्ट इस तरह से कर रहा है, और सरकार जो है वहां पे खड़े होके जो सरकार के वकील हैं वो माई लॉर्ड करते रहते हैं। भाई वहां माई लॉर्ड ही किया जाता है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं किया जाता, माई लॉर्ड ही किया जाता है और माई लॉर्ड करके ही सारा मामला संभाला जाता है। लेकिन ये है, मैं अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि जो मुझे दिख रहा है जिसकी बात हो रही है कि साहब के मोदी जी कह रहे हैं कि हम बड़े निर्णय लेंगे, तो उस बड़े निर्णय में से एक बड़े निर्णय का संकेत आज मिल गया। वो बड़े निर्णय ये है कि ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं अब बड़े निर्णय के तहत ये बाहर भेजे जाएंगे, क्योंकि ये भी कह दिया कि हमने भैया UNHCR का कोई रेफ्यूजी वाला जो ट्रीटी है वो हमने साइन नहीं की है, हम उससे बंधे हुए नहीं है। अगर UNHCR किसी को रेफ्यूजी स्टेटस दे देता है तो उसको भारत सरकार रेफ्यूजी स्टेटस देने के लिए बाध्य नहीं है। ये बड़ी बात है और यह है बड़े स्पष्ट रूप से कही गई है। इसके लिए तो देखिए भाई, जो लोग भी हैं और जितने लोग भी हैं जो सरकार को खोजते भी हैं दिन रात, हमारे जो क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो हमारे हिंदू लोग हैं ना, जो चाहते हैं कि साहब के पूरी तरह से सबको ध्वस्त कर दो, सबको मार काट दो, सबको एक्स सबका जो है वो बिल्कुल साहब कैसे जाइए, सरकार बेकार है, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, जो किया है उसका कोई किसी भी प्रकार का कोई एहसान नहीं है। मतलब सरकारें एहसान थोड़ी करती हैं, लेकिन उसका कोई क्रेडिट भी नहीं है वो सरकार को। जो नहीं किया है उसके लिए सरकार को हरा दो, कांग्रेस को ले। हाँ भाई, हमारे यहाँ हैं लोग, एक तो पार्टी बनी है इस प्रकार की जो इस प्रकार की बात करती है। उसने आज तक कभी कांग्रेस को आलोचना नहीं की, उसने आज तक कभी ममता दीदी की आलोचना नहीं की, उसने आज तक कभी केसीआर की आलोचना नहीं की, कभी द्रमुक की आलोचना नहीं की, कभी किसी की आलोचना नहीं की। वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं कि इन्होंने पूरा काम नहीं किया। या ये जो है ये छद्म हिंदुत्ववादी है। खैर, जो शुद्ध हिंदुत्ववादी है उनको तो जनता बता ही देगी, चुनाव का परिणाम आ ही जाएगा और उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई जमानत बचेगी। खैर, वो थोड़ा विषयांतर हो गया। बात हो रही थी ये जो अवैध घुसपैठिए बसे हुए हैं यहाँ पे, अवैध घुसपैठियों की संख्या कितनी है इसका अनुमान लगाना अब बड़ा दुरूह हो गया है। और वह दुरूह इसलिए भी हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल जैसी सरकार है जो कि पूरी तरह से प्रोत्साहित करती है इलीगल इमिग्रेशन को। ये उसी प्रकार की बात हो रही है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो वहाँ की फेडरल सरकार है, यानी कि जो बाइडेन सरकार है, वो पूरी तरह से इनकरेज करती है इलीगल माइग्रेशन को, कि वो लीगल माइग्रेशन से उनके यहाँ जो सेंसस होता है और सेंसस से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो सीटें गिनी जाती हैं, उन सीटें गिने जाने के लिए जो सेंसस होता है उसमें इलीगल्स को भी शामिल किया जाता है। तो जहाँ ज़्यादा इलीगल होते हैं वहाँ उनकी सीटों का प्रोपोर्शन अधिक हो जाता है, तो इलीगल उनकी सीटें जो हैं वो डेमोक्रेट एरियाज में ज़्यादा हो जाती हैं, वहीं इलीगल को लाते हैं, और उससे उन्हें एक अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल जाता है, उनको सिटीजनशिप नहीं भी दें तो भी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मूर्खताएं बहुत होती हैं लेकिन इस परले दर्जे की मूर्खताएं नहीं होती हैं। हमारे यहाँ जो सेंसस होगा या हमारे यहाँ जब डीलिमिटेशन होगा जो सीट्स का, तो जो एलिजिबल वोटर्स हैं केवल वे ही काउंट होंगे, दूसरे काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए हम इस तरह की बेवकूफियों से बचे हुए हैं। लेकिन प्रश्न वहीं आके ठहर जाता है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट्स हैं और ख़ास तौर से कोर्ट्स में एक पर्टिकुलर जो लॉबी है, उस लॉबी का कोई इलाज है क्या? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, क्या ह्यूमन राइट्स के नाम पर इनको अराष्ट्रीय गतिविधियाँ, देश विरोधी गतिविधियाँ, देशद्रोही गतिविधियाँ ये सब करते रहने दिया जाना चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच देश से ऊपर है? देश की एकता अखंडता सार्वभौमिकता से ऊपर है? संविधान में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होगी, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होंगे। और जहाँ भी देश की एकता अखंडता सार्वभौमिकता का प्रश्न आएगा तो वहाँ इनको कर्टेल किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, वो एक प्रकार से अपनी अलग ही डपली, अपना अलग ही राग, और वो अपने आप को अब स्टेट का पार्ट ही नहीं मानता, वो अपने आप को स्टेट आउटसाइड द स्टेट मानने लगा है। तो जो बड़े निर्णय होंगे उस बड़े निर्णय में एक बड़ा निर्णय अपेक्षित ये है कि भाई ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स आर अ मस्ट, ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। ज्यूडिशरी जो है वो देश नहीं चलाएगी यह निश्चित किया जाना परम आवश्यक है। और दूसरी बात, ये जो आजकल मेजोरिटेरियनिज्म का हुआ खड़ा करके एक माइनॉरिटी विदिन अ माइनॉरिटी या बिल्कुल एक छोटी सी माइनॉरिटी, कुछ वकीलों की जो माइनॉरिटी है, वो कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो देश को चलाना चाह रही है, ये तो कतई किसी भी प्रकार से इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए स्वागत है आज जो स्टैंड लिया सरकार ने, और साथ में ये भी है कि भाई जो बड़े निर्णय लिए जाएं उसमें जो मैंने कहा कि जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो निश्चित रूप से एड्रेस होनी चाहिए, भले ही उसके लिए संविधान को नए रूप से लागू करना पड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।